तो जब हम मामलात को देखते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आदाब है, अदब, मैनर्स। मैं चंद जुमले बोलूँगी इस्लामी आदाब के, ये आप अपनी शीट का जो बॉक्स है उसके अंदर भी नोट कर सकते हैं। छोटा छोटा लिखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ लिखेगा। इस्लाम में मैनर्स की क्या हैसियत है? देखिए, किसी के हकूक और फ़राइज़ तो बाद की चीज़ है, वो तो बहुत छोटी चीज़ होगी। सबसे पहले आप अपने मैनर्स ठीक कीजिए। आप बदतमीज़ी से बात करेंगे, आप हकूक से ज़्यादा भी लोगों को दे दें, फिर भी बात नहीं बनेगी, लोग खुश नहीं होंगे। कई लोग हैं पैसे से तोल देते हैं बीवियों को, बात करने में बदतमीज़ हैं, ओए तोए करके बात करते हैं, इंसल्ट कर देंगे किसी के सामने, बीवी को खुशी नहीं देगा वो डायमंड का सेट जो आप एनिवर्सरी के नाम पर ले आए। आप ज़रा अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ठीक किया करें, ये मैनर्स होते हैं। तो चंद बातें कि इस्लामिक मैनर्स की हमारे असलाफ की निगाहों में क्या कदर थी। मैं नाम बोलूँगी, नाम आप ना लिखिएगा, मैं क्यों बोलती हूँ ये मैं आपको अभी भी बता दूँ। बहुत सारे रेफरेंसेस दिए ना इस कोर्स में, ये शरह सदर के लिए, नहीं लिख सकते ना लिखा करें, मैं आपको दे दूंगी बाद में, आपको ग्रुपिंग में मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग सुन के सारी उम्र लिखते रहिए। इस वक्त रूह पे बात करें, लेकिन मैं ना बोलूंगी ना तो हो सकता है किसी बात को सुन के आपको लगेगा कि ये इनकी अपनी बात है, और दूसरी बात है कि फिर किलो काल रह जाती है ना। तो रेफरेंसेस दीन का एक खुलासा है, हदीस पढ़ेंगे तो इसकी अहमियत समझ आएगी। तो जो मैं नाम बोलती हूँ ये आप ना लिखा करें, डोंट वरी। मैं वैसे भी कह दूं किसी आलिम ने कहा, किसी बड़े ने कहा, इट्स ओके, बट आपको ये फील हो कि जो इल्म लिया जा रहा है वो सही है। तो हबीब बिन शहीद एक बुजुर्ग थे, कहने लगे अपने बेटे से, फुकहा और उलमा की सोहबत इख्तियार करो, इनसे इल्म सीखो और इनसे अदब सीखो, बेशक ये मुझे गुफ्तगू की कसरत की बनिस्बत ज्यादा महबूब है। बुक है अरबी की, बहुत ही खूबसूरत है, तस्करतु सामे वल मुतकल्लिम, उसकी जिल्द 2 में ये बात मौजूद है। क्या पता चला? यानी इनका सबसे अच्छा जुमला क्या है कि गुफ्तगू की बनिस्बत अदब सीखना। इसी तरह इमाम ज़ाहबी कहते हैं, इमाम अहमद की मजलिस में 5,000 लोग जब हाजिर होते थे, सोचिए आज है ऐसी कोई क्लास जिसमें 5,000 लोग हों, वो तो अखबारों में आ जाएगा और फिर वो लाइक्स में चले जाएंगे। नहीं, हमारे असलाफ की मजलिसों में लाखों लोग भी होते थे। इमाम अबू हुरैरा रहमहुल्ला किसी शहर में आके गुजर जाते थे ना, लाखों का मजमा होता था। इमाम बुखारी रहमहुल्ला एक शहर से उठ के दूसरे शहर में जाते थे, लाखों लोग, 90,000 लोगों को तो गालिबन, अगर मैं अपने याद से बता रही हूँ, 90,000 लोगों को जो मेरे फिगर है जहन में, इमाम बुखारी ने बकलम खुद वन ऑन वन बेस पे बुखारी सिखाई थी। आप ये ना सोचे कि आज बहुत शागिर्द हो गए, आज तो आटे में नमक है, आज तो कदर ही नहीं, मसरूफ है, बिजी है, ये था वो था। कितने लोग हैं जिनको ये सीखने की तलब है, तो कितने सीखते हैं? क्या सब सीखे बैठे हैं घरों में? मजबूरियां तो देखिए, रोना आता लफ्ज मजबूरी सुनकर, हम मजबूर लोग हैं और ख़ास तौर पर इल्म के मामले में तो हम बड़े ही मजबूर हैं, अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। तो इमाम अहमद की मजलिस में 5,000 लोग हाजिर होते थे, 500 अफराद लिखते थे और बाकी इनके तौर तरीकों से अखलाक और अदब सीखते थे। ये असर अलामुल नुबला, बड़ी प्यारी किताब है ये भी, उसी के पेज 316 11 पार्ट है उसमें। यानी ज्यादा लोग क्या सीखते थे? अदब। कापियों पे नोट्स लेने तो हर एक के बस में नहीं होते, लेकिन आदाब तो सीखते थे, चलना, फिरना, उठना, बैठना, बात करना, ये एक एक चीज़ सीखने वाली होती है। इसी तरह मुखलत बिन हुसैन ने इब्ने मुबारक से कहा, हमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की बनिस्बत बहुत ज़्यादा अदब की ज़रूरत है, तज़किरतु सामे में भी ये बात मौजूद है। इब्ने सीरीन कहते हैं, असलाफ, असलाफ मीन इंसेस्टर्स, ओल्ड पीपल, आदाब को ऐसे सीखते थे जैसे इल्म को सीखते थे। इमाम शाफ़ी से कहा गया, आपकी आदाब के लिए ख्वाहिश कैसी है? यानी आपको आदाब सीखना कैसा लगता है? कहने लगे, मैं उसमें से कोई हर्फ सुनता हूँ जिसे मैं नहीं सुन पाता, तो मेरे आज़ा को मोहब्बत होती है कि वो इसे सुने, फिर इस नेमत से फ़ायदा उठाएं। यानी इल्म सीखते वक्त मैं इतना कॉन्शियस होता हूँ कि मेरे जिस्म का हर उज़्व सीख ले। और कहा गया कि आपकी अदब लेने के लिए तलब कैसी है? कहने लगे, जैसे किसी औरत का एक ही बच्चा हो और वो गुम हो जाए, तो इस औरत की तड़प की तरह आदाब की तलब है, तज़किरतुस्सामे वल मुतकल्लिम। यानी जैसे अकलौते बच्चे को माँ ढूंढती है ना, मैं इस तरह अदब ढूंढता हूँ। याद रखिए, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, सीधी बस 100 बातों की एक बात है। आज हमारे अपने मैनर ठीक नहीं होते, हम दूसरों को क्या देंगे? हम कहते हैं लफ्ज़ बोलने का नाम उस्ताद बनना है। उस्ताद इल्म नहीं देता, इल्म तो किताब देती है। उस्ताद तो इल्म की भूख देता है, उस्ताद तो मोटिवेटर होता है, वो तो रग़बत देता है, वो तो इल्म सीखने की ख्वाहिश पैदा करता है। असल चीज़ उस्ताद से जो सीखने की होती है वो अदब सीखना होता है। फिर इसी तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहते हैं, अबू बकर बिन, एक आलिम थे, उनका कॉल है अबू बकर बिन अल मुतवई, कहते हैं कि मैं अबू अब्दुल्ला, यानी ये उनकी कुनियत थी इमाम अहमद बिन हम्बल की, कहते हैं मैं उनके पीछे 12 साल तक पढ़ा रहा। 12 साल तक मैं इमाम अहमद के साथ रहा। वो अपनी औलाद को अल मुस्नद पढ़कर सुनाते थे। पता है ना आपको मुस्नद इमाम अहमद कितनी जिल्दें हैं, कोई बता सकता है आप में से? मुस्नद इमाम अहमद हदीस की मुस्तनद किताबों में से किताब है। कितनी जिल्दें हैं इसकी? 25 जिल्दें हैं। और बिलीव मी, विदाउट एनी एग्जेजुरेशन, ये सामने का जो कर्टन रॉड है ना, वहाँ से शुरू करके ब्रेक में देखिएगा, इतनी जगह में वो 25 आती हैं, इतनी मोटी मोटी जिल्दें हैं। लाइब्रेरियों में जाकर देखे, वहाँ अल मुस्नद इमाम अहमद, इतनी बड़ी किताब है, और अपने बच्चों को पढ़कर सुनाते थे। उनकी जिंदगियां और अपनी देखें तो हमें तो अपने बच्चों पर रोना आना चाहिए कि उनको माँ बाप कैसे मिले। असल बच्चे बुरे नहीं हैं, माँ बाप है, शागिर्द बुरे नहीं हैं, उस्तादों में आज वो फोकस और वो डेडिकेशन ही ना रही। बहरहाल कहते हैं कि वो तो उनको पढ़कर सुनाते थे, मैंने इनमें से एक भी हदीस नहीं लिखी, मैं इनके तौर तरीकों और अख्लाक को देखता रहता था। बात समझ गए? इमाम शाफी कहते हैं, जो इस बात से मोहब्बत रखे कि अल्लाह इसका दिल खोल दे या इसको रोशन कर दे, किस किस का दिल करता है आपका, आप में से? रोज़ दुआ पढ़ के बैठते हैं ना, रब्बे श्रह ली सदरी, ये दुआ ही है या सिर्फ लिप सर्विस है? दिल चाहता है दिल खुले तो क्या करे? नंबर एक, इस पर लाजिम है कि नंबर एक खलवत इख्तियार करे, खलवत तन्हाई, कम खाए। नेक्स्ट, बेवकूफ़ों के साथ मेलजोल छोड़ दे, क्योंकि वो उसको भी वैसे ही बना देंगे। और ऐसे इल्म वालों से बुग़्ज़ रखे, देखिए इल्म वालों से बुग़्ज़, जी, जिनके पास इंसाफ और अदब नहीं। मुकदमतुल मजमू शरौल मुहज़्ज़ब का ये रेफरेंस है। क्या बात समझ आती है कि शरह सदर होता ही इन बातों के बाद है। फिर हबीबुल जलाब कहते हैं, मैंने इब्ने मुबारक से सवाल किया, इंसान को कौन सी बेहतरीन चीज़ अता की गई? उन्होंने कहा तबई अकल, यानी अकल हो। कहा अच्छा, अगर वो ना हो तो? कहा हुस्ने अदब। कहा अगर वो भी ना हो, यानी किसी के पास अकल भी नहीं है, अदब भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जिससे फिर तुम मशवरा ले सको, यानी किसी को अच्छा मशवरा दे दिया करे। कहा अगर वो भी ना हो तो? कहा तवील खामोश रहे, फिर चुप रहे वो बंदा। कहा अगर ये भी ना हो तो? कहा फिर जल्द आने वाली मौत का इंतज़ार करे, यानी ऐसे बंदे को मर ही जाना चाहिए कि जिसके पास इन चारों में से कोई एक खैर भी नहीं। सैरुल अलाम नबूवा की रिवायत है, असलाफ में से किसी ने अपने बेटे से कहा है, मेरे बेटे अगर तुम अदब का एक बाब सीखो तो ये मुझे ज़्यादा महबूब है इससे कि तुम इल्म के 70 अबवाब सीखो। तज़किरतु सामे। इब्ने मुबारक कहते हैं, मैंने 30 बरस आदाब सीखे, मैनर सीखे पहले, यानी ऐसे जैसे आप कोई कोर्स करें तो आपको पहले 30 साल तक रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाएं कि हाउ यू शुड बी अ स्टूडेंट, कैसे चलना, कैसे बोलना, रूल्स एंड रेगुलेशन। और फिर 20 बरस तक इल्म सीखा, और पहले अदब सीखते थे हम, फिर इल्म सीखते थे। सैरुल नबूवा कितने साल लगे होंगे? 50 साल। हम में से कितने लोग सिर्फ 30 साल रूल्स एंड रेगुलेशन सीखें? हम कहते हैं जी उंगली पर रख के बताएं, टाइम कितना, 1 मिनट ऊपर होने लग गया, आपको जाना चाहिए, और 1 मिनट ऊपर हो गया, क्लास नहीं शुरू हुई, और ये हो गया, और हमारे जाने का वो ब्रेक वक्त पे नहीं हुई, यानी ये सारा कुछ सीखना। देखिए इल्म कब लेते हैं? इल्म क्या है? खाना। बर्तन क्या है? अदब। बेहतरीन खुशबू आ रही है आपको, चलें पिज़्ज़ा पसंद है तो पिज़्ज़े को ले लीजिए, कोई ऐसी इश्तहा बढ़ाने वाली खुशबू, लेकिन जब कोई आपके सामने लाए तो डस्ट पैन में पेश कर दे, खाएंगे? कचरा उठाने वाले ट्रे में कोई आपको खाना पेश करे तो खुशबू वाला खाना भी अच्छा लगेगा? इल्म कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पहले देखिए कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। दिल का बर्तन गंदा होगा ना तो इल्म में असर नहीं होगा। आज ये वजह है कि बहुत सारों के इल्म में तासीर ख़त्म होती जा रही है। लफाजी बड़ी है, लच्छेदार बयान है, कानों से टकराती हैं बातें, अमल में नहीं ढलती। तो तासीर मांगे कि अल्लाह बात में असर डाल दे। और इसी तरह से एक और कॉल के बाद आगे चलती हूँ। अल-क़र्राफ़ी कहते हैं, खूब अच्छी तरह जान लो कि बहुत ज़्यादा अमल की बनिस्बत थोड़ा अदब बेहतर है। किताब अल फुरूक, जिल्द 3, पेज 96, 96। तो अभी तो नहीं किसी को शक। आप बताइए कि आपको मैं जो ये बातें आज बता रही हूँ इसकी ज़रूरत है? टाइम तो नहीं आपका वेस्ट कर रही? रियली? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं। आपको थोड़ी सी बात मैंने इसकी तमहीद की दी है। अब नेक्स्ट थिंग आपके पास मुआमला बिन नफ्स है। आप अपने नफ्स के साथ कैसा मामला करें, यानी आज असल बात अगर आप इसको एक जुमले में लिख लीजिए, जैसे आप कहते हैं ना, हकूकोले बात हैं, ये आपके नफ्स के हकूक हैं। आप लिखिए इसका दूसरा नाम, मामलाते बिन नफ्स क्या हैं, इंसान के खुद अपने ऊपर हकूक, बीइंग अ ह्यूमन, मेरे क्या हैं। देखिए शायद इसकी वजाहत ना भी कर पाई हूँ, मुझे फील हो रहा है, चंद जुमलों में बोल दूँ कि इसकी अहमियत क्यों है। देखिए पहले अपना हक दीजिए। जहाज़ में बैठते हैं, एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर आप के सफ़र के दौरान ऑक्सीजन कम हो गई तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, तो क्या करें, उसको पकड़कर मुंह से लगा लें। और साथ ही फिर आगे क्या कहते हैं, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग विद किड्स, कोई भी आपके साथ है, हेल्प योर सेल्फ बिफोर हेल्पिंग अदर। ज़ाहिर है कि अगर माँ का अपना ही सांस उखड़ है तो बच्चे को कैसे देगी। बस ये बात है, पहले अपने हकूक दीजिए। और अल्लाह के नबी सल्लम की एक बड़ी प्यारी रिवायत है, इन्ना इलैही का हक्कुन, तेरा अपना भी हक है, नफ्स का हक है, तेरे जूर तेरे मेहमान का भी हक है। यानी हम सबको अपने हकूक भी देने हैं, तो सबसे पहला अपना हक, बल्कि मैं इसका एक तीसरा नाम भी बोल देती हूँ, खुद को आग से बचाने के लिए क्या करें। चाहते हैं बच्चे, हम ये चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे बाएख्लाक हों, उनका अच्छा मुस्तकबिल हो, और इसको अपनी सक्सेस स्टोरी भी बना लें। आज जितनी बातें पढ़ेंगे ना, अगर ये सारी मेरे अमल में आ गई तो मैं दुनिया का सक्सेसफुल इंसान बन सकती हूँ। फिर आपके बच्चे भी आपकी मानेंगे। कुछ लोगों को देखे तो आपको ज़िंदगी के हर फील्ड में सक्सेसफुल दिखते हैं, कामयाब दिखते हैं, और कुछ की घर वाले भी नहीं सुनते हैं। है ऐसे मामले, बोलने लगे चुप, डांट के बिठा देंगे, और ज़रा कोई बात करें तो सुनने को कोई नहीं तैयार। वजह यह है कि हमारे अपने अंदर वजन नहीं है। जैसे वो मैंने एक हकायत पढ़ी थी कि एक बुलबुल था, या जो भी परिंदा था, वाट एवर, उसकी चोंच में एक पत्थर था, एक दरख्त पे आके बैठ गया, तो नीचे पानी था। उसने वो पत्थर चोंच से फेंका और पानी में गिराया, एकदम आवाज़ आई टिक, और उसके बाद पानी में ये गर्दाब दायरे बने। इमेजिनेशन में आ रहा है? बहुत यानी शोर भी उठा और हलचल भी मची। दरख्त भी ये देख रहा था, वो कैसे देख रहा था, ये हकायत है। दरख्त को बड़ा ही उसके ऊपर आया, अच्छा इतनी खामोशी को इसने तोड़ा, सुकूत था और इसने शोर कर दिया और लहरें आ गईं, लो मैं भी करता हूँ। उसने अपना एक पत्ता सूखा हुआ वो भी गिराया, वहीं जहाँ पे थोड़ी देर पहले बुलबुल ने पत्थर गिराया था। ना शोर उठा और ना लहरें उठी। तो बुलबुल ये देख रहा था तो उसने कहा, दुनिया में हलचल मचाने से पहले अपने अंदर वजन पैदा करना पड़ता। पत्थर में वजन था ना, पत्ते में वजन नहीं था। तो आपको अपनी शख्सियत को पत्थर की तरह मजबूत करना पड़ेगा अगर आपको इस दुनिया में जीना। लोग आपको धक्के दे के निकल जाएंगे आगे। वो कहते हैं कि पानी हमेशा उधर ही गिरता है जहाँ ढाल होती है। जो आप में से पर्सनैलिटी वाइज वीक है ना, सब उसको लताड़ेंगे, सब उसका हक खाएंगे, देखिएगा, उसको बातें भी सुनाएंगे और आगे से वो हंसेगा भी एक हद तक। देखिए हम्बल होना और बात है, ह्यूमिलिएट होना और बात है। बी हम्बल बट डोंट ह्यूमिलिएट योर सेल्फ, अपना मजाक ना कराएं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको मुझे इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी। सबसे पहली चीज़ है, अपने हर काम की नीयत दुरुस्त कर लें, यानी नीयत की दुरुस्तगी, कह लीजिए कि ये नीयत के आदाब है। दिल के इरादे सच्चे, अपने दिल को पाक कर लें। कोई काम करते वक्त नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को हासिल करना और उसके हुक्मों पे अमल करना रखिए। जितनी ज़्यादा आपकी नीयत अच्छी होगी ना, उतना आपका काम अच्छा होगा। बुखारी की वो हदीस नंबर 1 सबको याद होनी चाहिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात। उसके आखिर में क्या आता है कि जिसकी हिजरत दुनिया के लिए होगी उसको दुनिया मिलेगी, औरत से शादी के लिए होगी औरत से शादी हो जाएगी, और जिसकी जिधर हिजरत होगी। सहाबा में एक सहाबी थे, उनका नाम ही लोगों ने अल मुहाजिरु इब्ने कैस डाल दिया था। एक औरत से शादी करने के लिए हिजरत की थी उन्होंने। बहरहाल अच्छी नीयत से जो भी काम करेंगे ना उस पे अजर मिलेगा। हदीस याद है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह तुम्हारी शक्लें और तुम्हारी सूरतें नहीं देखता। किस किस ने यह हदीस सुनी है? सही मुस्लिम 6542। हुस्न नीयत क्या है कि बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लों और सूरतों को नहीं देखता, माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे आमाल को देखता है। क्या पता चला कि जो माल दिया अल्लाह ने दिया, शक्ल दी तो अल्लाह ने दी। तुम अपने दिल की इसलाह कर लो और इसी तरह से तुम अपने आमाल को बेहतर से बेहतर बना लो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कोई भी काम करें ना तो अपनी नीयत अच्छी रखें। बुरा इरादा रख कर आप किसी से अच्छा भी काम करेंगे ना तो आप अपने नफ्स का हक नहीं देंगे। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन हम बी हसनतिन, जिसने नेकी का इरादा किया लेकिन वलम या अमलहा, लेकिन अमल नहीं कर सका, कुतिबत लहू हसना, उसके लिए भी एक नेकी लिखी जाती है। कभी अपनी नीयत को बुरा ना करें किसी मामले में भी। आप देखिए कि निकाह की शर्त क्या है, मेहर मुकर्रर करना, राइट? लेकिन अगर मेहर मुकर्रर करें लेकिन दिल में इरादा नहीं है कि अदा करूंगा, किसने देना है जी, तो वो जानी है। और कर्ज लिया और नीयत है कि कोई नहीं देना, वो चोर है, ये मुस्तद अहमद की रिवायत है। खराब नीयत और बुरा इरादा इंसान के नेक अमल को भी जाया करता है। सुबह उठकर किचन में जाने से लेकर रात बिस्तर पे सोने तक जो दीन दुनिया के बच्चों के शोहर के काम करती हैं आप, उसमें अपनी नीयत को दुरुस्त रखें। ये आपका सबसे पहला हक है। नीयत इज नेविगेटर। गलत एड्रेस डाल देंगे ना, गलत सास की खिदमत कर रहे हैं, नेविगेटर में शोहर की रजा है, नीयत खराब है, वाह वाह हो जाए। तकाबुल, काम कर रही है, घर में दो बहुएं हैं, एक खूब भड़बड़ के काम कर रही है, नीयत है कि दूसरी बहू को पीछे डालना है, नीयत की खराबी है। रियली ये तभी तो हमें भी धक्के लगते हैं, हम कहते हैं हाँ इनके पीछे जिंदगी गुजार दी, खुश नहीं हुई सास। एक सिस्टर थी, कहने लगी मेरे ससुराल मेरे से कभी खुश ही नहीं हुए, मैंने क्या क्या ना किया इनको खुश करने के लिए। मैंने कहा सिस्टर माजरत के साथ आपका अमल ही दुरुस्त नहीं था, आपने इनकी खुशी के लिए किया ना इसलिए नहीं खुश हुए। आप अल्लाह की रजा समझ कर एक अच्छे एहसान के जज्बे से करती तो ये आपसे खुश होते। और आज भी याद रखिए, जिस बंदे के पीछे इसलिए फिरेंगे ना कि वो आपसे खुश हो जाए, वो खुश नहीं होगा। आप अल्लाह की रजा के लिए उसको खुश कर दें, अल्लाह उसको आपसे खुश कर देगा। फिर इसी तरह से याद रखिए नीयत में एक और चीज बड़ी अहम, नाफरमानी का काम। अच्छी नीयत से भी करें तो नेकी नहीं बनेगा। आप फंडिंग करते हैं जलजला जदगान के लिए कॉन्सर्ट करके, वो फंडिंग हमारे आपके हाथ में दे दी जाएगी कयामत के दिन। किसी का दिल खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, या हराम माल से सदका कर रहे हैं, काम तो अच्छे हैं, नीयत बुरी है। तो नीयत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर याद रखिए अच्छी नीयत से वही काम कबूल होता है जिसका अल्लाह ने और उसके रसूल ने हुक्म दिया हो। तो यहाँ बैठ कर ज़रा सा पूछिए अपने आप से, ये कोर्स क्यों कर रही हूँ? देखिए करंट इस वक्त तो यही काम हो रहा है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं भी तो खुद से पूछूँ ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको? मेरे लिए तो हर दिन की ये बुलसरात है। याद रखिए नीयत शुरू में बहुत अच्छी होती है, ये भी लिख रहे हैं इसी के अंदर, नीयत शुरू में हमेशा अच्छी होती है, बाद में बिगड़ती है। जैसे आप घर से निकले, सबको पता है कि नॉर्थ साइड पे जाऊंगी तो उधर पहुंचूंगी, साउथ जाऊंगी। आप यहां से पहला टर्न कभी गलत नहीं लेते घर का या कहीं जाने का, अगले गलत होते हैं। अमूमन भूलते हैं तो बीच में कहीं भूल जाते हैं ना। इब्तदा में कोई भी काम करे नीयत अच्छी ही होती है मोस्टली, लेकिन बाद में खराबी होती है। तो अपनी नीयतों की फिक्र करें, नीयत ट्रैकर, अपनी नीयत को देखें। कोई भी अहम काम दिन में जब भी शुरू करे ना तो आपने उस चेकलिस्ट में टिक करना है कि मेरी नीयत क्या है इसको करने की। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मामला।